हे कृष्णा, दिस लेक्चर ऑन श्रीमद् भागवतम कैंटो 3 चैप्टर 14 श्लोक नंबर 50 गिवन एट इस्कॉन फरीदाबाद ऑन 17 नवंबर 2016 बाय माय सेल्फ प्रशांत मुकुंद दास।
तो ये सुंदर श्रीमद् भागवतम के 14 अध्याय का श्लोक 50वां श्लोक है। तो इसमें बोला गया है कि जब दिति माता के जो प्रसंग चल रहा है कि संध्या समय दिति का गर्भ धारण, तो वो जब उनको पता चला कि जिस समय मैंने अपना गर्भ धारण किया है, आप सब जानते हैं प्रसंग को, तो वो समय अनुकूल नहीं था पुत्र या पुत्री उत्पन्न के लिए। तो जब उनको पता चला कि उनका पुत्र राक्षस होने वाला है, तो उन्होंने जब प्रार्थना करी तो उनको ये आशीर्वाद मिला कि तुम्हारा जो पौत्र होगा, पुत्र का बेटा ना कि वो भीतर और बाहर से उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन कर सकेगा जिनकी पत्नी सुंदर लक्ष्मी थी। मतलब भगवान का बहुत ऊंचा भक्त होगा। तो कौन थे? प्रहलाद महाराज। इसीलिए कहा जाता है ना, इतो नरसिंह भजतो नरसिंह यतयामि ततो नरसिंह। तो प्रहलाद महाराज ने हर जगह सर्वत्र भगवान का दर्शन किया। तो ये तभी वो पता है, जैसा श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति तभी भगवान का साक्षात दर्शन कर पाएगा जब वो कृष्ण भावना पवित्र में बड़ा चढ़ा हो। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना पवित्र में बड़ा चढ़ा नहीं है, तो खाली भावुक तरीके से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। इसीलिए बाहर के जो लोग हैं भौतिकवादी या भक्त बनने के बाद भी जिसकी श्रद्धा नहीं है, जिसने इस हरिनाम की विधि को पालन करना शुरू नहीं किया सही से, उसको भगवान एक मेटल की मूर्ति, पत्थर का मूर्ति या फिर ऐसे ही दर्शन होगा कि यहाँ भगवान नहीं है। इसीलिए भगवान के साथ हमारा संबंध भी स्थापित नहीं हुआ। आचार्य बताते हैं संबंध अभिधेय परियोजन। संबंध स्थापित नहीं होगा तो फिर आगे की प्रक्रिया कैसे प्रारंभ हो? और संबंध तो किसी एक विशेष व्यक्ति से स्थापित होता है। किसी पत्थर के साथ हमारा संबंध नहीं हो सकता, किसी निर्विशेष निर्विकार चीज के साथ हमारा संबंध स्थापित नहीं हो सकता। तो अगर हमारा संबंध स्थापित हो सकता है तो किसी एक विशेष व्यक्ति के साथ हो सकता है, और वो विशेष व्यक्ति है कृष्ण। लेकिन उनके साथ संबंध स्थापित करने के लिए व्यक्ति को अपनी आंखों में एक स्पेशल चश्मा लगाना चाहिए, प्रेम का चश्मा। जैसे अभी कार्तिक मास गया है और उसमें सभी ने ये चीज सीखी कि जिस प्रकार यशोदा मैया अपने कृष्ण से प्रेम करती हैं, वैसा प्रेम अगर हम भगवान के लिए उत्पन्न कर सकें, तब जाकर के हो सकता है कि कृष्ण कृपा करके हमको दर्शन दें। इसीलिए ब्रह्म संहिता में वर्णन आया है, प्रेमांजन चरिता भक्ति लोचनीना संतम सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिन्तयं स्वरूपं गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। प्रेम अंजन, आंखों में प्रेम का काजल लगाएगा कोई व्यक्ति, तो वो जो भक्त जिसके हृदय में भगवान परमात्मा रूप में बैठे हैं, वो सामने प्रकट हो जाते हैं गुरु के माध्यम से, या फिर साक्षात भगवान कृपा करके भक्त पर अनुग्रह अनुग्रहित हमने पढ़ा, भगवान कृपा करते हैं और उस व्यक्ति को दर्शन देते हैं। जैसा अनेकों बार देखा जाता है कि भगवान भक्तों के साथ विशेष लीलाएं करते हैं और अपना अलग अलग प्रकार से दर्शन देते हैं। जैसे गर्भ धारण का प्रसंग है तो इसी के ऊपर एक विशेष कथा पढ़ रहा था, जगन्नाथ भगवान ने करी थी किसी भक्त के ऊपर। तो उसमें वो बता रहे थे, उनका अपना अनुभव था, निजी अनुभव, कि 2006 कलयुग में जो भी चल रहा है, सन 2006 में एक माता जी लिखती हैं, वो मायापुर गई थी जगन्नाथ जी से मिलने के लिए। मायापुर में जगन्नाथ मंदिर है, राजापुर के जगन्नाथ बोलते हैं। तो वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का दर्शन किया और उनको उस समय काफी वर्ष बीत चुके थे विवाह को, लेकिन कोई संतान उत्पन्न नहीं। तो एक ग्रस्त जीवन के व्यक्ति के लिए बोलते हैं कि संतान उत्पन्न होना ये आवश्यक है। इससे कई कारण है। कई महाराज लोगों से भी चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि माता अगर गर्भ धारण नहीं करती है तो उसका हृदय पत्थर जैसा हो जाता है। इसीलिए स्त्रियों को शास्त्रों में बताया गया कि सभी को विवाह करना पड़ता है। संन्यास का कोई प्रयोजन शास्त्र में नहीं है। वैदिक विधि के अंदर औरत जो है, स्त्री जो है, वो संन्यास धारण नहीं कर सकती है, ना ही वो ब्रह्मचारी बनकर रह सकती है। ब्रह्मचारिणी बनकर जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ब्रह्मचारिणी हो या संन्यासिनी हो, तो उसको विवाह के बंधन में जाना चाहिए। और विवाह का कारण क्या है कि वो संतान उत्पन्न करे, कृष्ण भावना में, ये कारण है इसका। तो इस तरह से यहाँ पर माता ने भी यही कारण से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन कोई संतान ही नहीं हुए। तो जब जगन्नाथ मंदिर में गए तो वहां के भक्तों ने वहां भगवान की विशेष लीलाएं सुनाई। कहा यहाँ के जगन्नाथ बड़े कृपालु है, आप कोई भी इच्छा मांगे वो पूरी हो जाती है। तो माता जी के मन में ऐसा, जब बहुत विशेष लीलाएं सुनी, वहां के भक्त गुणगान करते हैं, तो मन में भक्त के आ ही जाता है कि चलो यार मैं भी अपना मांगू। कोई भक्ति मांगता है, कोई शुद्धि मांगता है, कोई घर मांगता है, कोई गृहस्थी मांगता है। माता जी ने मन ही मन संतान प्राप्ति के लिए जगन्नाथ जी से कॉन्टेक्ट कर लिया कि हे जगन्नाथ, आप मुझे क्या करें, पुत्र या पुत्री दे हमारे घर में। और साथ में कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नियम होते हैं, वो नियम भी डाल दिए होते हैं ना। जब MOU साइन होता है, मेमोरेंडम ऑफ एजेंडा जो होता है, उसके अंदर डाल देते हैं पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। तो उन्होंने पॉइंट डाला पहला कि अगर जो भी पुत्र या पुत्री होगा उसका नाम मैं आप ही के नाम पर रखूंगी। अगर पुत्र हुआ तो जगन्नाथ दास, पुत्री हुई तो जगन्नाथ दास ही। तो इस तरह से उन्होंने सोचा मन में। और अगर जो भी भक्त हो, जो भी पुत्र या पुत्री होगा, उसके जीवन का एक ही कर्तव्य होगा, बस जगन्नाथ की सेवा करना रात दिन। और तीसरा, अगर आपने मुझ पर कृपा करी ना जगन्नाथ, तो मैं पूरे विश्व में इस बात को फैला दूंगी कि जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं, जो मांगो वो पूरा करते हैं। तो जगन्नाथ जी तो है कृपालु। जगन्नाथ जी ने भी कह दिया ओके, कहा हुआ जैसे। फिर वो उस यात्रा के बाद माता जी लिखते हैं मैं वापस आई और काफी वर्षों तक, काफी महीनों तक कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस कृपा का। तो घर वाले बोलने लगे कि बहुत दिन हो गए हैं भगवान नहीं सुनते, तो एक काम करो, इस संसार के भरोसे ही चलो, हॉस्पिटल जाओ, दवाइयां लो, कुछ तो करो। तो वो किसी इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल में उन्होंने डेट फिक्स करी, लेकिन उनका मन बार बार अंदर से कह रहा था नहीं, डॉक्टर वो क्या कर सकता है जो कृष्ण कर सकते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जब बीमार पड़ जाते थे और भक्त उनको दवाइयां खिलाते थे, तो भक्त कहते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं मुझे दवाई नहीं खानी है, ये जहर है, मैं नहीं खाऊंगा ये एलोपैथिक दवाइयां। तो प्रभुपाद जी को देखते थे कि उनके पेट में दर्द है और उनकी सर्जरी प्लान करी गई है और प्रभुपाद कचौड़ी खा रहे हैं। और प्रभुपाद जी क्या खा रहे हैं आप, कचौड़ी? कह रहे हैं यही मेरा दर्द ठीक कर सकती है, और हरिनाम ये मेरा दर्द ठीक कर सकता है। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी, लेकिन डॉक्टर ने आपको ये सॉलिड फूड खाने के लिए मना किया है। कहा देखो, मैं डॉक्टर का दास नहीं हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, इसलिए मैं कृष्ण पर भरोसा करता हूँ। तो इस तरह से वो माता जी भी मन में बार बार आ रहा था कि क्यों ना मैं कृष्ण पर निर्भर हो जाऊँ। श्री राधा गोविंद भगवान की जय, सीताराम कृष्ण भगवान, श्री पंचतंत्र भगवान कृष्ण। माता जी के भी मन में आ रहा था कि क्यों ना मैं भगवान पर निर्भर हो जाऊं। तो माता जी ने मन ही मन हॉस्पिटल जाने से पहले उन्होंने जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी एक दिन पहले। और जब जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट तो अभी मुझे फेल होता नजर आ रहा है, लग रहा है बस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो फेल है, आपको सुनते नहीं, आपको कितनी भी प्रार्थना करो आप सुनते ही नहीं, आप जवाब ही नहीं देते। ऐसा हम भक्तों को भी अनुभव होता है, इतनी बार बोलते हैं भगवान मुझे काम क्रोध दो, मोह मत्सर से दूर कर दो, माया से दूर करो, फिर तुरंत 3-4 दिन बाद फिर लगता है कि भगवान तो सुनते ही नहीं। इस तरह से उनको भी लग रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने गिड़गिड़ा के भगवान के आगे विनती करी तो भगवान ने उनकी बात सुनी और उनका ऐसा अनुभव हुआ कि कुछ हो रहा है मेरे शरीर के अंदर। और जब डॉक्टर को दिखाने गए तो पता चला कि उनके गर्भ धारण हुआ है। और उसके बाद जब उनके घर में पुत्री हुई तो उन्होंने उसका नाम रखा जगन्नाथ प्रिया देवी, जगन्नाथ प्रिय देवी, और वो अभी जगन्नाथ जी की सेवा करने लगी। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट की चीज भूल गई, क्या? गुणगान करना। उन्होंने कहा था मैं आपका गुणगान खुद कृपा लेगी, लेकिन किसी को बताया नहीं कि जगन्नाथ बड़े कृपालु हैं, प्रचार नहीं किया। ऐसे श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आपका जीवन अगर बदल गया तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, आपने जब तक दूसरों को नहीं बताया कि मेरा जीवन इनकी वजह से बदल गया, ये बताना है पूरे विश्व में घूम घूम के, और ज्यादा पंडित नहीं बनना है, बस ये बताना है इनके कारण मेरा जीवन बदल गया, आपका भी बदल जाएगा। यही है बुक मैराथन में यही बोलना है कि मैं गीता पढ़कर मेरा जीवन बदला, आप भी गीता पढ़िए। तो इस तरह से वो माता जी ने प्रचार नहीं किया था, तो जगन्नाथ जी ने उन स्वप्न में आपको कहा मेरा प्रचार करो, तो उन्होंने फिर कई प्रकार से प्रचार किया। जगन्नाथ जी ने क्षमा मांगी, लोगों को मुख से मौखिक रूप से बताया, लिखित रूप से बताया, पब्लिकेशंस में बताया, न्यूज पेपर में बताया, सब जगह बताया, तो फिर जगन्नाथ जी ने कृपा करी। तो इस तरह से है ये भक्त का निजी अनुभव है, ऐसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य। जब तक कोई कृष्ण भावना भक्त में बड़ा चढ़ा नहीं होगा, भगवान उसके साथ वार्तालाप साक्षात्कार नहीं करते हैं। तो जो भक्त है उनको मालूम है भगवान के विभिन्न अवतार है, और उसमें से वो किसी भी अवतार के साथ में अपना संबंध स्थापित कर सकता है। जैसे इसमें ब्रह्म संहिता में वर्णन है, रामादिमूर्तेषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार मुकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णा स्वयं समवत् परम कुमारयोः गोविंदमादि पुरुषम् तम अहम् भजामि। वो कहते हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है और उनके अनेकों अवतार हैं, राम आदि मूर्तिषु। तो उसमें एक श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं अनुवाद में, कृष्ण बलदेव संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न वासुदेव नारायण नरसिंह राम वराह पावन, अनेक अवतार हैं, और आप किसी भी अवतार से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। किसी को हो सकता है कि कृष्ण का बाल गोपाल को अच्छा लगता हो, अरे मेरे तो लाला लड्डू गोपाल है, तो उनको वैसा प्रेम हो सकता है। किसी को हो सकता है मेरे स्वामी श्री राम, मैं उनका दास हनुमान के जैसा। तो कोई भी रस, किसी भी भाव, किसी भी तरीके से संबंध स्थापित किया जा सकता है। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए तो उनको लाया गया अक्रूर जी के द्वारा ताकि कंस उनका वध कर सके। लेकिन भगवान क्यों आए थे? ताकि वो कंस का वध कर सके। और जब वो आए तो एक हाथी था, क्वालिया पेड़ हाथी, उसको जब छोड़ा गया तो भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने मुष्टिक प्रहार से ऐसे मदमस्त हाथी को, 1000 हाथियों का बल था, वो मर गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, और उसके दांत उखाड़ करके अपने कंधे पे रखकर युद्ध भूमि में प्रवेश कर गए कृष्ण और बलराम। और जब ये दोनों आ रहे थे तो जितनी भी ऑडियंस थी, जितने भी वहां पर देखने वाले लोग थे, वो सभी सभागृह में मौजूद लोगों को ऐसा लग रहा था कि कृष्ण उनकी जैसी इच्छा है वैसा वैसा रूप दिखा रहे हैं। कहते हैं ना, जाति की भावना जैसी प्रभु मूर्त दिन देखी तैसे। वैसे ही इसमें भागवतम में वर्णन है कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति ने अपने अपने अनुसार भगवान का दर्शन किया। तो जो ग्वाल पल्लव के रूप में भगवान जब आए तो कहते हैं, मल्लनाम अश्विन नृणाम नरवरम श्रीनाम स्मरो धीमान गोपानाम स्वजनो अस्ताम श्रीभुजाम शास्ता सौपित्रो शिशुभो मृत्युर्भोजपत्रे विराट अभिदोषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णिनाम परम देवता इति विदितो रंगम गतः सर्वजः। तो इसमें बताया कि अरे व्यक्ति ने अलग अलग रूपों में भगवान का दर्शन किया। मल्लनाम आशनीय, पहलवानों को ऐसा लग रहा था इससे ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है नहीं। जितने भी वहां पहलवान थे, चारों वगैरह, उन सब ने प्रार्थना करी कि इसमें तो बड़ा बल है। लोग सोच रहे थे ना कि छोटा सा बच्चा क्या पहलवानों से लड़ेगा, लेकिन मल्लनाम जितने भी मल्ल थे, मल्ल युद्ध वाले पहलवान थे, उनको लग रहा था बड़ा ही पावरफुल है, वज्र के समान, जैसे इंद्र के पास होता वज्र की बिजली के समान, ताकतवर लोहे के समान, इतना शक्तिशाली है ये, ऐसा लग रहा था। निराम नरवरम, और जितने भी वहां पुरुष बैठे थे उनको लग रहा था ये कौन है, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुष श्रेष्ठ, ये चले आ रहे हैं अभी वध कर देंगे दो मिनट में। स्त्री नाम स्वरो मूर्ति नाम, स्त्रियों को लग रहा था जैसे कामदेव की मूर्ति समान एक सुंदर व्यक्ति है, एक युद्ध स्तर में सूर्य प्रकट हो गया है जिसके शरीर से करोड़ों करोड़ों सूर्य की कांति भी प्रकट हो रही है, ऐसा लग रहा था स्त्रियों को। कामदेव साक्षात सबका मन हो रहा था काश में मेरे संग हो, ऐसा स्त्रियों के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। गोपालन स्वजनों, और जो गोप थे ग्वाल बाल उनको क्या लग रहा था, देखो हमारा फैमिली का आदमी हो क्या शक्तिशाली है कितना बढ़िया, वेरी गुड, बकर बकर कृष्ण, वेरी नाइस, गुड जॉब जॉब, ऐसे कर रहे अपना संबंधी लग रहा था सबको। और आस्ताम शिति भुजाम शास्त्र, और दुष्ट राजाओं को कैसा लग रहा था कि अब दंड देने वाला कोई वीर आ गया है, अब ये हम सबको दंडित करेगा, पहले ये कंस को मारेगा उसके बाद हमारी मृत्यु आने वाली। स्वपित्रो शिशु, और जो उनके माता पिता थे देवकी वासुदेव, उनको लग रहा था अरे वाह हमारा बेटा इतने दिनों बाद इतना बड़ा हो गया वापस आ गया, इतना छोटा सा है कैसे कोमल चरण है इसके, इतना सॉफ्ट है ऐसा दिख रहा था। और मृत्यु भोजपते, और भोजवंशी जो कंस था उसको कैसा लग रहा था, मृत्यु आ गई बस अब तो मैं मरने वाला हूँ, और बहुत ही घबरा रहा था, नींद नहीं आ रही थी उसको जब से पता चला था कि कृष्ण आने वाले लड़ने के लिए। विराटम अभिदुषाम, और मूर्खों के लिए भगवान विराट रूप यहाँ पर वर्णन है, मूर्खों के लिए विराट रूप। कई लोग बोलते हैं भगवान क्या है, अजी भगवान तो पूरा ब्रह्मांड ही भगवान है, तो ये जो मूर्ख लोग हैं उनको बताना पड़ता है कि भगवान बहुत विशाल है, वरना भगवान छोटे से रहकर भी सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो ये चीज दी है ना, जिसके अंदर कहते हैं कि भगवान द्वैत भी है अद्वैत भी है, तो वो चीज हमको समझनी चाहिए कि किस प्रकार से भगवान छोटी से छोटी वस्तु में भी रह सकते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज के लिए खंभे के अंदर भी भगवान थे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं भगवान सर्वत्र है या फिर मूर्ति में, एक चीज बताओ, या तो मूर्ति में होना चाहिए या ब्रह्मांड में होना चाहिए या फिर सर्वत्र होना चाहिए। ऐसा नहीं कहते कि सर्वत्र भी है और भगवान मूर्ति में भी है और ब्रह्मांड में भी है, उनको लगता है कि अगर ब्रह्मांड वाले कृष्ण धराधाम पे आ गए तो ब्रह्मांड तो खाली होगा, अभी वहां कौन होगा कृष्ण, लोग पूछते हैं प्रश्न, अगर कृष्ण यहाँ आ गए द्वापर युग में तो उनकी गद्दी कौन संभालता था, या फिर भगवान अगर मूर्ति में आ जाते हैं तो फिर इसका मतलब सर्वत्र कहाँ चले जाते हैं, लेकिन वो ये जानते नहीं है कि भगवान इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा यत्र यत्रयामि ततो नरसिंहा, भगवान हर जगह है, बाहर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, बाहर भी है अंदर भी है, बस आपको क्या चाहिए प्रेम। तो कहते हैं हरि प्रकट सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही है मैं जाना, हरि सभा हर जगह है, लेकिन अगर आप प्रेम करेंगे तो हो सकता है जैसे प्रहलाद के लिए खंभे से आए हमारे लिए भी कम से कम विग्रह से तो दर्शन दे सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रेम की आवश्यकता है। और जितने भी योगी थे उन सभी योगियों को ब्रह्म रूप में भगवान का दर्शन हुआ, कि भगवान ब्रह्म के जैसे परम सत्य के रूप में भगवान का दर्शन हुआ, कि इनसे ज्यादा तो सत्य है ही नहीं, अगर सत्य की मूर्तिमान बनाए जाए तो कृष्ण, ऐसा योगियों को दर्शन हो रहा था। और वृष्णिवंशी जो थे भगवान श्री कृष्ण के, उनको लग रहा था कि हमारे परम पूज्य देवता समान भगवान पधार रहे हैं, और इस प्रकार से कृष्ण और बलराम के प्रति अनेकों अनेकों लोगों ने अपने अपने भावों को प्रस्तुत किया। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग रस यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, तो कुल मिलाकर के 12 रसों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में हुआ, जिनसे हम भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो जैसे मल्ला नाम आश्रय, मल्लों को भगवान रौद्र रूप में नजर आ रहे हैं, भयानक रौद्र एक रस होता है, रौद्र रस है ना, या फिर और जो नृण नाम पुरुष थे उनको अद्भुत रूप में भगवान, अद्भुत रस, अद्भुत अद्भुत है ना, अद्भुत भगवान का एक नाम अद्भुत, बड़े अमेजिंग डिफरेंट अद्भुत। और स्त्रियों को भगवान क्योंकि कामदेव नजर आ रहे थे तो श्रृंगार रस एक होता है, श्रृंगार माताओं को श्रृंगार रस, श्री कृष्ण से ज्यादा सुंदर और कोई नहीं है, तो श्रृंगार रस ने भगवान का संबंध स्थापित हो रहा था। गोपालन सज्जनों, और गोप जो थे ना हंस रहे थे, वाह कृष्ण वाह, तुमका हास्य रस प्रकट हो रहा था वहां पे, और जो जितने भी दुष्ट राजा थे उनको वीर रस में भगवान का दर्शन हो रहा था, और जो सुपित्र थे जो उनके अपने माता पिता थे उनको दया आ रही थी कि मेरा कृष्ण अब इतने बड़े बड़े पहलवानों के बीच फंस गया है, दया आ रही थी उनको। और जो जो कंस था उसको मृत्यु के रूप में तो भय जो है ना, भय ये रस उत्पन्न हो रहा था, भय लग रहा था बहुत ज्यादा, घबराहट हो रही थी देख करके। और जो मूर्ख थे उनको विभत्स रस का अनुभव हो रहा था, विभत्स इतना विभिन्न, इतना विराट, इतना विशाल, बोलते हैं रोंगटे तो भगवान के पेड़ जितने भी हैं सब रोंगटे हैं, जितनी नदियां हैं भगवान की नाड़ियां हैं, मतलब भगवान ऐसे लेटे हुए और हम उनके ऊपर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये एक तो समझाने के लिए वर्णन है, अन्यथा भगवान को गोविंद आदि पुरुषम तम बजा गोविंद है, वो ऐसे लेटते लेटते नहीं हमारे लिए, वो भगवान विष्णु को देते काम की तुम करो। इसलिए देवताओं ने पूछा कि भगवान ब्रह्मा जी को आपने सृष्टि रचने को दे दिया, शिव जी को नाश करने के लिए दे दिया, विष्णु को पालन करने के लिए दे दिया, तो आप क्या करेंगे? भगवान बोले मैं तो बांसुरी बजाऊंगा, और कोई काम नहीं मेरे पास, मैं इतना टाइम पास नहीं कर सकता हूँ कि मैं लेट जाऊं और नाड़ियां प्री नदियां मेरे ऊपर घूम रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये सब नहीं करते भगवान। तो ये विभत्स रस में भगवान का दर्शन होता है, और जितने भी योगी थे उनको शांत रस में भगवान का दर्शन होता है, शांत भाव से एक जगह बैठे हुए। और जितने भी प्रेमिकाएं थी, जितने भी विष्णु वंशी थे, गोप सखा थे, और उन सभी को प्रेम रूप में भगवान का दर्शन हो रहा था, प्रेम रस। तो इस तरह से विभिन्न रसों का वर्णन है। तो हमें समझना चाहिए कि भक्त जो है वो भगवान के साथ किसी न किसी रस में दर्शन करते हैं भगवान का, निराकार या निर्भर में नहीं। जैसे एक संस्था है जो कहती है जैसे भगवान है वैसा ही मैं हूं, क्या मानते हैं बोलो, सो अहम, जैसे भगवान वैसा मैं, सो अहम, जैसे वो वैसा मैं, नर ही नारायण है, या फिर अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही नारायण हूं। तो ये सब चीजें कैटम धर्म है। सही मायने में श्री भागवत धर्म क्या है कि हम भगवान के मूर्तिमान रूप में किसी एक रूप में भगवान के साथ किसी एक रस में कोई एक भाव में संबंध स्थापित करें। तो हम सही मायने में जैसे इस अनुवाद में लिखा है कि शुद्ध भक्त भगवान के किसी एक नित्य रूप से जुड़ जाता है, किसी न किसी एक रूप से जुड़ना चाहिए। कोई भी नहीं हो सकता है कि कोशिश कर रहे हैं राम से प्रेम है पर कोशिश कर रहे हैं कृष्ण से जुड़ जाए। हाँ मानते हैं कृष्ण से अवतार लिया है राम, लेकिन अगर राम से प्रेम है तो राम से भी जुड़ सकते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी ने रामचंद्र जी की मूर्तियां स्थापित करी अपने मंदिर में। नरसिंह भगवान से प्रेम है, भाई के भक्त है, वो कहते हैं हमें तो नरसिंह भगवान से बहुत प्रेम है, तो नरसिंह से ही अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कृष्ण से ही संबंध स्थापित करना है, सब कृष्ण रूपी है। तो इस तरह से वो संस्था है सोहम। अभी पीछे उत्तम नगर में एक बार हमने हरिनाम संकीर्तन निकाला कि कार्तिक मास में, तो एक भक्त है वो अपने घर में के गए, नए नए जुड़े हैं, और बोले कि आई हम आपको अपने गुरु जी का दर्शन कराते हैं। मैंने सोचा कि इस कौन में जुड़े हुए कौन से गुरु जी का दर्शन बोल सकते थे, आइए प्रभुपाद जी का दर्शन कराते हैं। वो ले गए अपने कमरे में, दिखाया मंदिर बनाया है, मंदिर में कोई भगवान नहीं है, सिर्फ गुरु जी विशेष प्रकार के गुरु जी रखे हैं। मैंने कहा ये क्या है? कह रहे ये हमारी जितनी भी गुरु जी की पीढ़ियां है ना वो है, और ये छोटा वाला फोटो भी छोटे वाले गुरु जी का है। तो मैंने कहा छोटू गुरु जी जो है वो हमारे हैं, छोटू गुरु जी। तो यानी क्या बोलते हैं वो बता नहीं सकते हैं क्या बोलते हैं, मैंने फिर भी पूछ लो। तो मैंने अपनी तरफ से ऑप्शन दिए कौन बनेगा कृष्ण भक्त ABCD। तो मैंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अरे नहीं नहीं कहा, फिर क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा, अरे नहीं, फिर मैंने कहा सोहम, हाँ वही। तो मैंने कहा अच्छा सोहम, अच्छा अच्छा ये जब थे आप लोग। तो फिर मैंने उनको एक सोहम के ऊपर एक बात बताई। मैंने कहा अब बॉम्बे में एक भक्त थे, बॉम्बई के मंदिर में आया करते थे, तो उनके एक मित्र थे जो इस सोसाइटी से जुड़े हुए थे सोहम। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ही विपरीत स्थिति है, कोई व्यक्ति भगवान से बराबरी कर रहा है, सोहम रोज बोल रहा है हाथ जोड़ के आंख में सोहम, जैसे तुम वैसा मैं, जैसे तुम वैसा मैं, सोहम सोहम सोहम। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम सोहम नहीं है, हम तो कौन है, जीवेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास, हम दास हैं। तो उसके दोस्त ने कहा कि देखो भाई सोहम सोहम मत करो, हम तो भगवान के दास हैं, दास बन के रहो। कहा नहीं, मैं अपने गुरु जी का दिया हुआ दीक्षा मंत्र कैसे छोड़ दूं, वादा किया था अग्नि के सामने कि मैं 100 हम जप करूंगा। कहा छोड़ नहीं सकते हो तो जोड़ तो सकते हो। हाँ जोड़ सकता हूँ, तो जोड़ दो। क्या जोड़ू? बोले 100 हम के आगे दास जोड़ दो। क्या जोड़ दो? दास। तो क्या बन गया? दासोहम, दासोहम। ठीक है, हरे कृष्णा नहीं जप रहा, कम से कम दास जप हो रहा है, इसका मन में बात। जब वो गए तो देखा एक दिन गुरु जी घूम रहे थे, और गुरु जी ने देखा जैसे हमारी चैंटिंग टाइम होता है, सब भक्त होते हैं ऐसे, गुरु जी ने देखा सारे भक्त बोल रहे हैं सोहम सोहम, ये बैठा है अलग से बोल रहा है दासोहम दासोहम। अरे तो दास बन गया, ये तो गड़बड़ हो गई। तो उनके गुरु जी ने कहा देखो भाई ये दास वास हटाओ, तो हम मंत्र है, तुम गलत मंत्र दे रहे हो। तो कहा देखिए मेरा बहुत ही बचपन का दोस्त है, उसने कहा दास जोड़ो तो मैं दास जोड़ के रखूंगा, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, छोड़ नहीं सकते हो, जोड़ नहीं सकते हो। हाँ जोड़ सकते हो तो जोड़ लो। क्या जोड़ना है? 100 जोड़ लो, 100। तो हो गया 100 दासो हम। तो इस तरह से वो बोलने लगे, अभी भक्त आए कहा फिर वहीं का वहीं पहुंच गया। तो ये तो गड़बड़ हो गई। तो उनके भक्त ने कहा, उसके मित्र ने, कि देखो भाई तुम पता है तुम छोड़ोगे तो बोले जोड़ लो। क्या जोड़ लो? दास जोड़ लो। तो अभी वो रात दिन एक मंत्र का जप करने लगा, दासो दासो हम, दास के दास के दासो, दासो दासो हम, गोपिल भरते और पद कमल और दास दास दास। वो व्यक्ति के अंदर वो भावना जागृत हुई, और वो भक्त बता रहे थे कि ये दासो दासो हम करते करते मेरे में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि मैं हरे कृष्णा मंत्र जपने लगा, और रोज बोलने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से है, किसी भी एक रस में हम अपने भगवान के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, कहीं हम सो हम या नर नारायण में ना फंस जाए, इसलिए एक संबंध जरूर रखें। तो कुल मिला के 12 रसों के बारे में भागवत में वर्णन है, जिसमें से 5 जो है वो मुख्य रस है, बाकी 7 गौड़ रस है। 5 मुख्य रस में शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य और माधुर्य रस, ये 5 रस मुख्य रस है। गौड़ में आते हैं आश्चर्य, हास्य, वीर, दया, रौद्र, विभत्स और भयानक भयानक। तो इस तरह से ये 12 रस उत्पन्न होते हैं, इसमें से कम किसी भी एक मुख्य रस में हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं इन 12 रसों का परम लक्ष्य है, भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान श्री कृष्ण पर हम जो है अपना प्रेम, अपना संबंध स्थापित करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम जप तो करते रहे लेकिन बिना संबंध के, तो वो हो गया कि ये घर पर जाकर घंटी बजाते रहो और आपका अगर रिश्ता नहीं है उससे तो अपने घर में कभी एंट्री नहीं देगा। तो गोलोक धाम में एंट्री तो तभी मिलेगी ना कि मेरा रिश्तेदार है। चाहे हम अपनी पुरानी स्थिति को समझ जाए कि हम भगवान के दास हैं, कुछ तो समझे। अगर कोई संबंध ही नहीं है भगवान और मैं, तो भगवान को भगवान बनना पसंद नहीं है। भगवान तो है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि लोग मुझे भगवान का जैसा माने, बिल्कुल भी नहीं चाहते। इसीलिए जब शुक्ल द्वादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के पिता नंद बाबा जो स्नान करने के लिए जब यमुना में गए थे, तो उनको वरुण देव जो थे वो पकड़ कर ले गए थे, उनके जो दूत थे। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि वरुण देव पकड़ कर ले गए हैं, तो वो गए तुरंत और जाकर के अपने पिता को छुड़ाने के लिए जब पहुंचे, तो वहां पर वरुण देव आदि देवता सब खड़े हो गए अपनी अपनी गद्दियों से, कहा श्री कृष्ण आ गए हैं। तो नंद बाबा हैरान हो गए देखकर कि मेरा पुत्र को देखकर ये सारे देवी देवता खड़े हो गए, हम वरुण लोक के, यमुना नदी के नीचे ही है वरुण लोक, तो उसमें सभी के सब खड़े हो गए। तो उन्होंने पूछा भाई तुम सब इसकी पूजा क्यों कर रहे हो? कहा अरे आज हमारा किस्मत खुल गई, ये बड़ा ही भाग्य की बात है, मेरे दूतों ने अपराध को किया कि आपको पकड़कर वरुण लोक में ले आए, नंद बाबा को पकड़ लाए, कृष्ण के पिता को पकड़ लाए, लेकिन अच्छा भी किया, इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ हमारे वरुण लोक के अंदर, और ना कहां हम और कहां कृष्ण, कभी नहीं आने वाले थे, वो तो प्रेमी भक्तों के पास ही आते हैं। तो जब ये सब पता चला तो वापिस आके नंद बाबा ने सभी लोगों को कहा कि मेरा पुत्र जो है वो तो भगवान है, भगवान स्वरूप है, इसके आगे सभी देवी देवता पुष्प डालते हैं, प्रणाम करते हैं, ये तो भगवान है। और पूरे ब्रज में बात फैलने लगी, भगवान है भगवान है भगवान। लेकिन ज्यादातर लोगों ने स्वीकार नहीं किया। जैसे हम भी किसी को बोलते हैं ना, कॉर्पोरेट में जाकर या भौतिकवादी संसार में, ईश्वरम परम कृष्ण, तो ऐसा लोग बोलते नहीं नहीं कृष्ण भगवान थोड़ी है, देवी जी भगवान है, देखो भगवान ऐसे होते हैं, कुछ तो करते नहीं, ऐसे खड़े रहते बात से मिले, ये भी भगवान थोड़ी है, तो ऐसे लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, तो उनके लिए भगवान कभी प्रकट नहीं होंगे। तो ग्वाल वालों को जब पता चला ना, उनका संबंध था, उन्होंने कहा कृष्ण अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम भगवान हो, फिर तो एक काम करो जरा हमें वैकुंठ लोक का दर्शन करा दो। हाँ भगवान बोले कि अच्छा वैकुंठ लोक का दर्शन करना चाहते हो, चलो तुम्हें दिखा कर लाता हूँ। तो सभी लोगों को भगवान वैकुंठ का दर्शन कराने ले गए। तो जब नीचे से जा रहे थे इंद्र लोक आदि लोगों को, सात लोगों को पार करके, ब्रह्म लोक को पार करके और वैकुंठ धाम में प्रवेश किए, तो वहां विष्णु जी बैठे हुए हैं और ये गेट पर खड़े हुए हैं, कौन कृष्ण और बाकी के सारे ग्वाल सखा। अब जब सभी खड़े थे तो सबने देखा इतना सुंदर चिंतामणि रत्नों का भरा हुआ वैकुंठ धाम, और सभी ग्वाल बाल कृष्ण से कहने लगे लाला अरे ये तो बड़ा ही सुंदर है, तू तो इतनी सुंदर जगह ले आया कि जो अमरावती है इंद्र की नगरी जिसे स्वर्ग कहते हैं, जहां लोग जाने के लिए रात दिन पुण्य कर्म करते हैं, बस स्वर्गवासी हो जाए कैसे भी, और ऐसी जगह जो है वो तुम्हारे वैकुंठ धाम की चप्पल रखने की जगह। भाई वैकुंठ में जाएंगे जैसे मंदिर में आते हैं तो चप्पल उतारते हैं, तो वैकुंठ में बाहर चप्पल रखने का स्थान है वो भी अमरावती जो है उसके सामने बिल्कुल उससे भी कहीं गई गुजरी है स्वर्ग। सोचो आप कैसा होगा वैकुंठ धाम अंदर से। चिंतामणि प्रखर सत्व सुकल्प वृक्षा लक्षा विदेशीर लक्ष्मी सहस्र समरम सेतमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। चिंतामणि, चिंतामणि रत्नों का बना हुआ है, सहस्त्र लक्ष्मी भगवान विष्णु की सेवा में लगे हुए हैं और विष्णु बैठे हैं। उन्होंने कहा और थोड़ी देर में देखते क्या है कि कृष्ण यहाँ से गायब है और वहां विष्णु रूप में उनका दर्शन हो। अरे लाला ये क्या मुकुट लगाया और इतना विशाल विष्णु रूप चतुर्भुज रूप लेके भगवान दर्शन दे। सभी भगवान को देखकर घबरा गए, हमसे बड़ा अपराध हुआ, हम तो इसके कंधे पे चढ़ते हैं, इसके साथ में खेलते हैं, कभी हम पैर मार के गिरा देते हैं, इसको छुपन छुपाई खेलते हैं, सभी बड़ा घबरा गए। तो भगवान ने तुरंत जब नीचे आए तो अपनी योग माया शक्ति से सबको विस्मरण करा लिया कि मैं कौन हूँ, भगवान 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 बन के रहना नहीं चाहते। भगवान के साथ तो लोग क्या व्यवहार करते हैं कि एक बहुत बड़ा सा 40 वाट का बल्ब लगा के लकड़ी के वाल्टर में तारा लगा के बंद कर देते हैं। उनके साथ कोई संबंध नहीं है कि उनसे चर्चा करें, उन्हें संगीत सुनाएं, उनको सुलाएं, उनको उठाएं, उनको भोग लगाएं, ऐसा कोई संबंध नहीं है। बस तभी वाल्टर खोलते हैं जब हमारा कोई विशेष हमें अपने पाप से निवृत्ति करनी होती है और भोग अर्पित करना हो, तो कोई विशेष संबंध जब तक नहीं होगा तब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे पांच रस में से आप कोई भी एक रस चुन सकते हैं, इसमें संक्षिप्त में आप उदाहरण देंगे ताकि क्योंकि समय समाप्त हो गया, वरना सोच रहे थे इसका विस्तृत वर्णन भी हो सकता है। तो जैसे शांत रस, शांत रस में व्यक्ति जो है वो किस प्रकार से होते हैं इसका उदाहरण आता है। जैसे सनत कुमार बिल्लम मंगल ठाकुर के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में आया है कि बिल्लम मंगल ठाकुर एक विशेष दक्षिण भारत के भक्त हुए हैं जिनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने कृष्ण कर्णामृत नामक ग्रंथ भी लिखा। और ऐसे बिल्लम मंगल ठाकुर कहते हैं मेरी दीक्षा तो निर्विकार ब्रह्म में हुई थी कि भगवान निराकार है, लेकिन जब मैं वृंदावन आया और मेरे मित्र भी नहीं थे तो इस नटखट बाल गोपाल ने अपनी विभिन्न लीलाएं करकर ऐसा ऐसा कार्य किया कि मुझे मोहित कर लिया और ऐसा संबंध स्थापित हो गया कि अब दिल से निकालना भी चाहो तो निकल नहीं सकता, ये अंदर घुस गया है। भगवान टेढ़े है ना तीन जगह से त्रिभंग ललितम, घुसने में समय लग सकता है लेकिन अगर वो घुस गए ना तो फिर टेढ़ी चीज को निकालना, डिब्बे में कोई टेढ़ी चीज डाल दो निकलती नहीं, बड़ी मुश्किल होती है। तो कृष्ण घुस गए पर हृदय में तो फिर वो हृदय से ही प्रकट होंगे, दर्शन देंगे, लीलाएं करेंगे, लेकिन बात नहीं है। तो ये शांत रस में रहकर भी भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है। और दास रस में आप उदाहरण ले सकते हैं हनुमान जी का। हनुमान किस प्रकार के दास हैं कि उनकी एकत्व भावना है कि बस मेरे भगवान श्री राम है। जैसे भगवान ने एक बार गरुड़ को भेजा, कहा कि जाओ बुलाकर लेके आओ, किसको? हनुमान। तो गरुड़ जब आए तो उनकी विशाल चोंच, विशाल पांव, वो सीधा वैकुंठ से 3-4 लैप में नीचे आ जाते हैं। और नीचे आए और देखा हनुमान जी बैठकर ध्यान कर रहे हैं, और किसका ध्यान कर रहे हैं? राम राम। तो ये आया, उन्होंने बोला हरि बोल, एक भक्त दूसरे भक्त को ऐसे बुलाते हरि बोल, ये भी भक्त हरि बोल, हनुमान जी कह रहे चलो भगवान बुला रहे। और रामचंद्र जी ने बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, तो हनुमान जी ध्यान मन में सुना नहीं। अभी वरुण को, गरुण को बहुत बुरा लगा, गरुण देव कहने लगे मैं बुला रहा हूँ, भक्त रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। तो उनको बहुत ही क्रोध आया और उन्होंने चोंच मारते हुए कहा सुनते हो, भगवान बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने ऐसे देखा और मन देख कुछ जवाब नहीं दिया, और फिर अपने ध्यान में जप करते रहे राम राम निवारा। तो जब गरुण ने देखा कि ये तो जवाब नहीं दे रहे और बहुत ही ज्यादा और क्रोध उनका विशाल हुआ, तो उन्होंने जोर से चोंच मारते हुए धक्का दिया हनुमान जी को, कहा सुनते नहीं हो, भगवान बुला रहे हैं, अनादर करते हो भगवान का, भगवान कृष्ण तुम्हें कब से बुला रहे हैं। तो अभी तो हनुमान जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्या किया, दोनों पंख पकड़ के शरीर से अलग करके छोड़ दिए। तो जब चीर दिया पूरा पंख को, लेकिन वो तो चिन्मय है ना, वो कोई ऐसे तो नहीं हमारे तरह के हार्ट टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, वो दोबारा से पंख जुड़ जाते हैं। और फिर वो उड़ते उड़ते और भगवान को जाकर बोले क्या सेवा दी थी भगवान आपने, ऐसा भक्त है निष्ठुर कि मैंने 3 बार कहा कि तुम्हें भगवान बुला रहे हैं, वो भगवान से इतना प्रेम करता है, उनका नाम में इतना प्रेम करता है, नाम जप में इतना मग्न है कि आप बुला रहे तब भी आपको नहीं सुनता। तो भगवान ने पूछा गरुड़ तुमने जाकर क्या कहा? कहा बोले मैंने बोला भगवान कृष्ण तुम्हें बुलाए, यही तो गलती करी, उसका प्रेम तो राम स्वरूप में है मेरे, जाओ और जाकर बोलो तुम्हें राम बुला रहे, फिर देखना। हाँ ठीक है, फिर उड़ते हुए गए घबराते हुए। अभी हनुमान जी बैठे थे ध्यान मग और जाकर बोला हरि बोल, बोले फिर उन्होंने देखा फिर आ गए रामचंद्र जी बुला रहे हैं। तो अभी तो और हनुमान जी को क्रोध आया, उन्होंने फिर से पकड़ा और फिर से छीन लिया। जब दोबारा चेहरा बुला रहे अब क्यों तुमने किया? कहा पहले क्यों नहीं बताया कि रामचंद्र जी बुला रहे हैं, उनको इंतजार करा है मेरे प्रभु, तुरंत चलो। और गरुण जब तक पहुंचे उससे पहले हनुमान पहुंच गए भगवान के पास। तो ये दास है जो कि अपने स्वामी की सेवा करना चाहता है इतना कि बस उन्हीं के नाम, उन्हीं के ध्यान, उन्हीं की सेवा में रहना चाहता है, उसके लिए और कुछ नहीं संसार में। तो ये दास भावना से भगवान की सेवा की जा सकती है। और सांख्य रस में हम देखते हैं कैसे भगवान से संबंध स्थापित होता है, कि जब सभी ग्वाल सखाओं ने गोवर्धन पर्वत के नीचे भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए देखा, तो क्या हुआ? सभी ग्वाल सखा बोले लाला तू बहुत दिन से खड़ा है, 7 दिन हो गए, प्रसाद नहीं लिया तुमने, अब भूखा है प्यासा है, तो एक काम कर थोड़ा रेस्ट कर पानी पी ले, हम लोग कहीं अपनी अपनी लाठी लेके खड़े हुए हैं, थोड़ा रेस्ट कर। तो भगवान ने कहा कि अच्छा, तो ये सबका प्रेम था सखा भाव में, हम करेंगे सेवा जा। तो भगवान मानते तो उन्हें पता होता, अरे नहीं भाई भगवान ही कर सकते, हम तो भक्त हैं, हम नीचे खड़े होने के लिए बने नहीं, उनका संबंध है भगवान आप जाओ, हम बोलते थे ऑल्टर से भगवान आप थोड़ा रेस्ट कर लो, पूरा दिन खड़े रहते हो, दर्शन देते हो, 2 घंटे हम खड़े रहते हैं नीला पेंट लगा करके, ऐसा बोलते हैं, ऐसा भाव भी नहीं आता कभी, बस तुम बने हो कृपा देने के लिए, हम बने भोग करने के लिए, ऐसी भावना है हमारी। तो भगवान को उन्होंने बोला कि अरे लाला तुम हट जाओ और हम अपने अपनी लाठी लेकर खड़े रहेंगे, तुम पानी पीकर तो आओ थोड़ा। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी उंगली को थोड़ा सा ही टेढ़ा किया था ऐसे नीचे, तो इतने में उनके सारे डंडे टूट गए, चरमर होकर सारे डंडे टूट रहे, तो सारे चिल्ला रहे लाला लाला तुम्हें उठाओ तुम्हें उठाओ, हम तो मर जाते ही अंदर सकते लाला, हम तो चक्र नहीं कर सकते। तो ये भावना है। फिर दूसरा सखा बोलता है कि लाला कम से कम इतना तो कर सकते हो कि एक हाथ से पकड़ा है इसको दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर लो, इस हाथ से एक हाथ थक गया होगा, ये भावना आएगी कि भगवान थक गए होंगे, एक ही पोज में खड़े हुए हैं, ये भगवान थोड़ा लेफ्ट साइड में खड़े हुए हैं, भावना है, ये साक्षी रचना भगवान से संबंध स्थापित करना है। तो इस तरह से हम और भी इसमें काफी प्रकार के सखा है, शिवचिंतक सखा, विश्वस्त पात्र सखा, उनकी विभिन्न लीलाएं वर्णन कर सकते हैं। और फिर चौथा रस है वात्सल्य रस, वो आप जानते हैं दामोदर लीला में किस प्रकार से यशोदा मैया ने वात्सल्य भाव में भगवान श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया। तो माँ के रूप में सोच सकते हैं कि मैं इनके लिए भोग बनाऊं, आज इनके लिए क्या स्वादिष्ट व्यंजन बनाऊं, कौन सा वस्त्र बनाऊं, कौन सा कलर भगवान को पसंद है, ऐसी भावना जो है वो वात्सल्य रस को स्थापित करती है। और आखिरी है गोपियों का रस, माधुर्य रस। माधुर्य रस में गोपियों का एक पंक्ति से आप समझ सकते हैं किस प्रकार का गोपियों का रस है। सारी गोपियां क्या कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव पूरे ब्रजमंडल में घूम रहे हैं, है ना, गौचारण लीला में हम सुनते हैं। तो सारी गोपियां कहती हैं सब एक एक करके लेट जाओ जमीन पर और उनके उनको कहो वो हमारे शरीर पर से होकर के गुजरे, ताकि क्या हो जाएगा उनके लिए कार्पेट वेलकम हो जाएगा, सॉफ्ट कार्पेट वेलकम। पूरे शरीर को भगवान के लिए आत्मनिवेदन भक्ति जो है वो पूर्ण रूप में दिखा रहे हैं, हमारा सब कुछ आपका है, हमारे ऊपर से चल करके जाओ। तो ये जो भावना है, जब बहुत ज्यादा अधिक प्रेम होगा भगवान से तब हम भगवान से सेवा नहीं मांगेंगे, हम कहेंगे भगवान हमें रागिन अपनी सेवा में लगाओ। अभी तो हम थोड़ा सा नाम जप करते हैं उसका फल चाहते हैं, ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, ये सारे के सारे अनर्थ हैं। और उन अनर्थों को हम अलग से चर्चा कर सकते हैं किसी समय में। तो श्रील प्रभुपाद जी एक उदाहरण में बताते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग भगवान को इसलिए नहीं जानना चाहते हैं क्योंकि लोग मूर्ख हैं। जैसे उदाहरण से प्रभुपाद जी कथा सुनाते हैं अंतिम एक पंक्ति में, प्रभुपाद जी बोल रहे एक बच्चा था वो एग्जाम में लेने के लिए गया, उसके पिता ने जब लौटा तो पूछा कैसा रहा, कहा मुश्किल प्रश्न तो मेरी समझ में नहीं आए इसलिए किए नहीं, और आसान को करने का फायदा क्या था, जो मुझे आते थे मास्टर जी को तो आते ही होंगे, तो पूरा पूरा ऐसे छोड़ कर आ गया। तो वैसे ही लोग हैं, कुछ कहते हैं कृष्ण को समझना बड़ा ही गूढ़ विषय है, 40-50 साल निकल जाएंगे ग्रंथ पढ़ते चर्चा करते सत्संग करते तब भी हो सकता है समझ आए ना आए। और कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान को समझने के लिए टाइम वेस्ट करेंगे, भगवान है ठीक है छोड़ो, इसके लिए इतना टाइम थोड़ी, गीता पढ़ो भागवत पढ़ो हरि नाम लो मंदिर जाओ सेवा करो, इतना क्या, हमारे माँ बाप ने बताया था भगवान है ठीक है बस टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो दोनों लोग वही हैं जो अपना पर्चा खाली छोड़ के अपना जीवन मनुष्य दुर्लभ जीवन समाप्त करके चले जाते हैं। बेस्ट वो व्यक्ति है जो समझे कि मुझे मुश्किल प्रश्न भी लिखने हैं और सरल प्रश्न भी लिखने हैं, और इसके एग्जामिनेशन टेस्ट होता है जब व्यक्ति की मृत्यु आती है। तो हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी जिस प्रकार से बोल रहे हैं उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज को लक्ष्मी नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि उन्होंने विशेष प्रेम संबंध भगवान से स्थापित किया था। तो आप भी कुछ एक रस में भगवान से प्रेम संबंध स्थापित कर सकते हैं, और आशा है कि भगवान आपके जीवन में भी साक्षात्कार प्रदान करें। हरे कृष्ण।